मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का नमस्कार। मित्रों, आज 10 दिसंबर 2015 के इस afeis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और इसी के साथ ही मैं स्वागत करता हूं विशेष रूप से अपने उन दो नौजवान साथियों का भी, जिन्होंने एकेडमी की फरवरी 2016 में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोनों साथियों के नाम हैं दीपक कुमार यादव, आप सहारनपुर उत्तर प्रदेश से हैं, और दूसरे साथी हैं रंजीत कुमार जो रांची झारखंड से हैं। तो दीपक और रंजीत, आप दोनों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, लाइफ मैनेजमेंट के पार्ट पर कल हम लोग बहुत ही खूबसूरत मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे, और मैं जानता हूं कि कल जिन विषयों को मैंने अपने इस हिस्से में उठाया है उसको लेकर के आप लोगों के दिमाग में थोड़ी बहुत उथल पुथल चल रही होगी। उथल पुथल इस मायने में कि उसमें से बहुत सी बातों से आप सहमत होंगे, बहुत सी बातों से आप सहमत नहीं भी हो सकते हैं, कुछ के बारे में आप लोग द्वंद में होंगे, कुछ पर विश्वास हो रहा होगा, कुछ पर विश्वास नहीं हो रहा होगा, और यदि ऐसा हो रहा है तो मैं समझता हूं कि यह बहुत अच्छी स्थिति है। अच्छी स्थिति इसलिए है फ्रेंड्स कि मैं ये मानकर चलता हूं कि यदि आप बिना खुद के मंथन के किसी भी चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वह चीज बहुत समय तक हमारे अंदर मौजूद नहीं रह पाती, लेकिन यदि उसी चीज को हम बहुत मंथन के बाद, विचार विमर्श करने के बाद, सोचने विचारने के बाद, ऑब्जर्वेशंस के बाद, प्रैक्टिकल करने के बाद जब एक्सेप्ट करते हैं तो फिर वो हमारी अपनी चीज हो जाती है। और सच पूछे तो हमारा अधिकार तो उसी पर होता है जो हमारी अपनी चीज हो, क्योंकि हम तभी उसका उसी समय इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपको उसकी जरूरत है। अन्यथा तो अगर वो दूसरे की चीज है तो एक तो आप संभल संभल करके ही इस्तेमाल करेंगे, दूसरा है कि उसके प्रति डाउट भी बना रहेगा कि यार ये पता नहीं कब तक हमारे पास है, कब ये दूसरे के पास चली जाएगी, और स्वाभाविक है कि ऐसी स्थिति में आप उस पर अधिकार अनुभव कैसे कर सकते हैं, इसलिए वो चीज आपकी अपनी नहीं हो पाती। हमारे यहां फ्रेंड्स जो समुद्र मंथन का जो मिथक है वो इसीलिए, आप देखिए कि समुद्र मंथन के बाद उसमें से कितनी सारी चीजें निकली, विष भी निकला लेकिन अमृत भी निकला। तो जब हम मानसिक रूप से मंथन करते हैं किसी भी इश्यूज पर तो आप मान करके चलिए कि उसमें से कड़वाहट भी पैदा होगी, और लेकिन विश्वास रखिए अमृत भी निकलेगा। लेकिन जो कुछ भी निकलेगा वो आपका अपना होगा, और जो आपका अपना होगा उसी में आपकी जिंदगी को बदलने की ताकत होगी। मित्रों, मैं इसी को ही कहता हूं विचार। आप सोच कर देखिए कि इस धरती पर जो भी घटना घटती है, कोई भी घटना घटे, या चलिए हम बड़ी घटनाओं के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम तो सब अपने अपने जीवन के बारे में बात कर रहे हैं, आप एक छोटा सा अनुभव करके देखिए। आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम, चाहे छोटा सा ही काम क्यों ना हो, चाहे एक कदम आगे बढ़ाने का ही काम क्यों ना हो, या मान लीजिए कि आप बैठे हुए हैं और बैठने के बाद आप थोड़ी सी अपनी मुद्रा बदलना चाहते हैं, चाहे यह मुद्रा बदलने का ही छोटा सा काम क्यों ना हो, आप पाएंगे कि उस काम को करने से पहले एक विचार आपके दिमाग में आएगा, और वो इतनी तेजी से आता है, या कह लीजिए कि हम उस विचार के आने और चले जाने और फिर दूसरे के फटाक से आ जाने के इतने आदि हो गए हैं कि हमें इस बात का एहसास ही नहीं हो पाता कि ऐसा भी कुछ होता है। ठीक वैसे ही जैसे कि सांस जैसी इंपॉर्टेंट चीज हम लेते हैं और छोड़ते हैं लेकिन हमको एहसास नहीं होता, वो तो जब सांस घुटने लगे तब एहसास होता है। पलकों को देख लीजिए, लगातार पलकें उठ रही हैं, गिर रही हैं, लेकिन हमको कहां पता चलता है कि पलकें उठ भी और गिर भी रही हैं। ठीक इसी तरह से विचारों के मामले में भी होता है, हम कोई भी काम करते हैं छोटा या बड़ा तो उसके पहले विचार आते ही आते हैं, और जो विचार आते हैं ठीक उसी के अनुकूल हम कदम अगला उठाते हैं, वही हमारा काम होता है। अगर आपका मन ठंडा पानी पीने का कर रहा है और ठंडा पानी पीने का विचार आपके दिमाग में आया है तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आप गर्म पानी पी लेंगे, बशर्ते कि ठंडा पानी आपको मिल सके। तो हर कर्म के पहले विचार आते हैं, अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सीधे सीधे सहमत बिल्कुल ना हो, आप इसको अनुभव करके देखें, तभी इस ये चीज आपकी अपनी हो पाएगी। तो यदि आप मेरी इस बात से सहमत हैं कि हर कर्म के पहले विचार आते हैं, और ये बात आप जानते ही हैं कि अगर जिंदगी को बदलना है तो आपको अपने कर्म को बदलना होगा। कर्म को बदलने का मतलब मैं भाग्य को बदलने की बात नहीं कह रहा हूं, कर्म का संबंध यहां काम से है, जो जो गीता में कहा गया है। शायद ये बड़ी खूबसूरत बात है कि कर्म का मतलब काम भी होता है और कर्म का मतलब भाग्य भी होता है, यानी कि दोनों एक है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। अगर आप भाग्य को बदलना चाहते हैं तो वो केवल काम को बदलने से ही संभव होगा, और काम को कैसे बदलेंगे? अब यहां सवाल ये है, काम को बदलना तभी संभव हो पाएगा जब हम सब अपने विचारों को बदलेंगे। यानी कि विचारों को बदलेंगे तो हम काम करने को बदलेंगे, और काम करने को जब हम बदलेंगे तो स्वाभाविक तौर पर हमारा भाग्य बदल जाएगा, यानी कि हमारी जिंदगी बदल जाएगी। बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है। दोस्तों मैं एक आपको एक छोटी सी घटना बताता हूं जो लगभग लगभग 10 दिन पहले की ही होगी। उस समय मैं भोपाल में था, अभी मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो मैं छत्तीसगढ़ के एक जिला है रायगढ़, मैं वहां से ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। तो उस समय हम लोग सुबह उठ करके, मैं, मेरा बेटा और मेरे बेटे के ससुर गाड़ी से गांव जाते थे, जो लगभग 60-65 किलोमीटर दूर एक गांव था। हमारा ड्राइवर था अनुज, जो गाड़ी ड्राइव करता था, और वो जब गाड़ी ड्राइव करता था तो वो लगातार हॉर्न बजाता जाता था। मैंने उससे कितनी बार कहा कि तुम हॉर्न मत बजाया करो, वो भी शायद सुनते सुनते तंग आ गया होगा। उसने कहा कि सर अगर हॉर्न नहीं बजाएंगे तो हम पहुंचेंगे ही नहीं, फिर तो यहां तो आप देख ही रहे कि क्या हाल है। मैं कहा कोई बात नहीं, चलो एक दिन हम ट्राई करते हैं, नहीं पहुंचेंगे तो हम उसका वो भुगत लेंगे, जो भी हर्जाना होगा, जो भी नुकसान होगा। तो मैं ऐसा करो कि आज हॉर्न मत बजाओ, मैं लेकिन जहां हॉर्न बजाना होगा वहां मैं तुमको बताऊंगा, वहां तुम हॉर्न बजा लेना। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल मना ही, अगर गाड़ी में हॉर्न है तो बजाने के लिए ही है, क्योंकि हॉर्न से कोई सजावट नहीं होती गाड़ी की और ना कोई गाड़ी की एफिशिएंसी बढ़ती है इंजन की। अगर है तो बजाने के लिए ही है, लेकिन हमें यह जानना चाहिए कि कब बजाना है और कब नहीं बजाना है। मैं उसका चेहरा देख रहा था तो मन मार करके उसको, अब उसके सामने कुछ चारा था नहीं कि वो मेरी बात को एक्सेप्ट करे। हम लोग घर से निकले और मैंने उसे याद दिलाया कि देखो तुम हॉर्न नहीं बजाओगे, और बीच बीच में मैं याद दिलाता रहा कि तुम हॉर्न नहीं बजाओगे, क्योंकि आदत पड़ी हुई है और आदत एक ऐसी चीज होती है कि अगर खाली भी पड़ा है और पता लगा कि हॉर्न बजा दिया, कि इसी भय से कि पता नहीं कोई अचानक आ ना जाए, भगवान जाने दिमाग की चाल समझ में तो आती नहीं, तो मैं बीच बीच में याद भी दिलाता रहा। दोस्तों हम 60 किलोमीटर गए और 60 किलोमीटर लौट करके भी आ गए, उसमें एक बार भी हॉर्न नहीं बजा। हम वहां पहुंच भी गए और इत्मीनान से वापस भी आ गए। जितने मिनट में इससे पहले पहुंचते थे उसी समय उतने ही मिनट में पहुंचे भी, और आने में हमको जितना वक्त लगता था उतने ही वक्त में हम वापस आ गए। और मैंने पूछा कि अब बताओ कि तुम्हारे हॉर्न न बजाने ने तुम्हारे पूरे के पूरे इस काम में कहां बाधा डाली। वो चुप था क्योंकि प्रमाण उसके सामने था। और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि जब हम अगले दिन गए, क्योंकि हम कई दिनों तक जाते रहे थे, और जब हम अगले दिन गए तो मजेदार बात यह है कि उसने हॉर्न नहीं बजाया। तीसरे दिन भी उसने हॉर्न नहीं बजाया। अब मुझे नहीं मालूम कि हॉर्न बजा रहा है या नहीं बजा रहा है, क्योंकि उसके बाद से मैं बाहर हूं। तो मित्रों, उसके दिमाग में यह विचार बैठ गया था कि बिना हॉर्न बजाए मेरी ये जर्नी पूरी हो ही नहीं सकती। मान लीजिए कि चौराहे पर गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, लाल बत्ती का इंतजार कर रहे हैं, और उसको लगता है कि अगर मैं हॉर्न नहीं बजाऊंगा तो ये बत्ती हरी ही नहीं होगी, या अगर बत्ती हरी भी हो गई तो ये पता लगा कि सामने वाला उसको देखेगा ही नहीं और वो खड़ा रह जाएगा। अरे भैया, सामने वाले को भी हरी बत्ती के हरे होने का इंतजार है, वो इस गलत फहमी में नहीं है कि चौराहे पर ही उसका गैराज है, घर है, और वो आ गया, अब उसे आगे नहीं जाना है। सब एक ही काम में लगे हुए हैं कि बत्ती का को देख रहे हैं, बत्ती हरी हो और वो सब आगे बढ़े। इसके बारे में हमारे दिमाग में डाउट क्यों है? सड़क पर जो सामने चल रहा है उसको भी चिंता है कि कोई एक्सीडेंट न कर दे या उसका किसी से एक्सीडेंट न हो जाए, वह भी उतना सतर्क होकर के चल रहा है। तो फिर ये हॉर्न की चाय चूं पे पा क्यों है, अननेसेसरी क्यों है? ये सड़क की जरूरत नहीं है, ये गाड़ी की भी जरूरत नहीं है, और सच पूछिए तो ये आपके यात्रा की भी जरूरत नहीं है। मुश्किल हो गई है दोस्तों इस बात की कि ये फालतू की चीज हमारे दिमाग की जरूरत हो गई है। और ये केवल मेरे ही ड्राइवर के साथ नहीं है, हर एक के साथ है। मैं जब ड्राइवर था तो सच पूछे तो कभी मेरे साथ भी ऐसा ही था। मैं तो दिल्ली में ड्राइव करता था और लगता था कि बिना हॉर्न के, ऐसा मान के चलते थे कि जो सामने जाने वाले सारे के सारे बहरे जा रहे हैं, हम ही केवल एक कान वाले हैं, इनको मेरी गाड़ी की आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है, इन लोगों को अपनी जिंदगी की चिंता नहीं है कि कोई भी आकर के कहीं से भी ठोंक दे। अरे उनको भी उतनी ही सुरक्षा की चिंता है, उनके भी कान ठीक ठाक हैं, उनको भी अपना सफर अच्छे तरीके से पूरा करना है। हम इस चीज पर विश्वास क्यों नहीं कर पाते? लेकिन दोस्तों जब मैं ओमान गया तो मैंने देखा कि ओमान में हॉर्न ही सुनाई नहीं पड़ रही है, सड़कों पे गाड़ियां चल रही हैं लेकिन हॉर्न का नाम ही नहीं है। मैंने पूछा कि यार ये क्या चमत्कार है? बोली यहां हॉर्न बजाने पर बहुत बड़ा जुर्माना है, यहां तक कि अगर तीसरी बार पकड़े गए तो लाइसेंस ही रद्द हो जाता है, हॉर्न बजाने पर इतनी बड़ी सजा है। और उस सजा के भय ने शायद उनके विचारों को बदला, और जैसे ही उनके विचार बदले वैसे उनके कर्म बदल गए। अब हॉर्न पर हाथ जाता ही नहीं, बहुत मुश्किल से जाता है, जब बहुत जरूरी होती है तब जाता है, मतलब हॉर्न एक तरह से एक इमरजेंसी बन गई है उनकी, और शांति के साथ सब कुछ हो रहे हैं। मित्रों मैं चाहूंगा कि आप सब भी अगर मेरे इस बात से जरा सा भी इत्तफाक रखते हैं कि वास्तव में विचारों को बदल करके अपनी जिंदगी को बदला जा सकता है, तो मैं चाहूंगा कि आप सब कहीं ना कहीं इसे अनुभव के स्तर पर महसूस करें, अपने अपने लेवल पर देखें कि किस तरीके से विचारों को बदलने का प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर पड़ा है या नहीं पड़ा है। मित्रों चलिए मैं दो क्षेत्रों में ये एक प्रैक्टिकल की बात आप लोगों से शेयर करता हूं। पहला तो ये है कि जो हमारे किसी से भी संबंध होते हैं, राइट, अच्छे होते हैं खराब होते हैं, सीधी सी बात है कि अगर हम सामने वाले व्यक्ति के केवल नकारात्मक गुणों को लेकर के चलते हैं और उसी पर अपने संबंधों को विकसित करते हैं तो उससे हमारे संबंध खराब हो जाते हैं, और अगर हम उनके सकारात्मक चीजों को लेकर के चलते हैं तो हमारे संबंध अच्छे होते चले जाते हैं। और इस धरती पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों चीजों से मिलकर बना हुआ न हो, न तो कोई पूरी तरह से नकारात्मक होता है और न कोई पूरी तरह से सकारात्मक होता है, हां उनके अनुपात अलग अलग जरूर हो सकते हैं। अब आप केवल यह देखें कि जिनके जिनसे आपके संबंध खराब हैं उनके केवल अच्छी चीजों के बारे में सोच करके देखिए, और दोस्तों जिस दिन आपके संबंध बने थे उस दिन तो कुछ ना कुछ तो अच्छी चीज रही ही होगी, तभी तो संबंध बने। अगर गलत चीज होती तो गलत चीजों पर तो आप संबंध, हम कोई भी संबंध स्थापित नहीं करता, तो आप उनकी अच्छी चीजों को सोच करके देखिए, आप तुरंत महसूस करेंगे कि नहीं, अब वो जो नकारात्मकता का जो जहर था, जो कड़वापन था, आपके दिमाग से थोड़ा 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 कम होने लगा है, आप खुद महसूस करेंगे। और अच्छे के उल्टे को सोच करके देखिए, उनके नकारात्मक गुणों को सोच करके देखिए, तो आपको लगेगा कि क्या हो रहा है, ये तो इतनी मिठास जो चीज थी उसमें ये कंकड़ कहां से आने लगे हैं, ये तो गड़बड़ होने लगा है। और जहां ऐसा लगे आप अपने दिमाग को फिर तुरंत बदल करके और फिर से सकारात्मकता पर ले आइए। मित्रों संबंधों की दीवार अगर सकारात्मकता पर बनी है तो समझ लीजिए कि वो बहुत ही मजबूत दीवार है, और नकारात्मकता पर बनी हुई दीवार एक ऐसी दीवार है जो सिर्फ रेत के दम पर खड़ी की गई है, कभी भी ढह जाएगी, या दलदल पर उसकी नींव डाली गई है, कभी भी धस जाएगी, कभी भी वो की नहीं रह सकती। तो ये हमारे विचार हैं कि हमने अपने संबंधों को किन गुणों पर खड़ा किया है, और वो केवल विचार उनको खड़े करते हैं, दूसरा कुछ खड़ा नहीं करता। मित्रों मैं तो यहां तक मान करके चलता हूं कि सच में जो सुख और दुख है वो मूलतः हमारे विचार ही हैं, उससे परे कुछ विशेष नहीं है। एक ही क्षण में हम एक चीज के बारे में जब अच्छा सोचते हैं तो सुख महसूस होने लगता है, और जब गलत तरीके से सोचते हैं तो वही हमें तकलीफ देने लगता है। दोस्तों ये सब जीवन जो हमें मिला है, जो प्रकृति ने दिया है, जो ईश्वर ने दिया है, माता पिता ने हमें जन्म दिया है, पाला पोसा है, प्रकृति ने हमारा साथ दिया है, समाज ने हमें अवलंबन प्रदान किया है, तब जाकर के हमारा ये जीवन बना है। इस जीवन को मैं समझता हूं कि शायद अच्छे तरीके से जीना, खुशी से जीना, ईश्वर के चरणों में चढ़ाया गया सबसे बड़ा उपहार है, फूलों की सबसे बड़ी माला है। क्योंकि ईश्वर अगर हमारा पिता है तो पिता खुश ही तब होता है जब वो देखता है कि उसके बच्चे भी खुश हैं। तो शायद हम अपने को खुश रख करके अपने पिता को ही खुश रखने की काम करते हैं, यही उनकी आराधना हो सकती है और यही उनकी पूजा हो सकती है। तो उसने जो जीवन दिया है, जो भी हमारी परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के लिए हमारे सामने सिर्फ तीन विकल्प रहते हैं। पहला विकल्प तो ये कि मैं उन परिस्थितियों को बदलूं, बदल सकता हूं तो बिल्कुल बदलूं, बदली भी जाती है। दूसरी परिस्थिति होती है कि उससे मैं बिल्कुल अपने को अलग कर लूं, अगर मैं बदल नहीं कर पा रहा हूं तो उसे मैं छोड़ छाड़ करके उससे बिल्कुल अलग हो जाऊं, और तीसरी परिस्थिति होती है कि अगर ये दोनों मैं नहीं कर पा रहा हूं तो उसे स्वीकार कर लूं। और जैसे ही आप उसे पूरी तरह से स्वीकार करते हैं आप वही हो जाते हैं, या कह लीजिए कि वो परिस्थिति ही आप बन जाती है और सारे दुख के जितने भी कारण होते हैं विलीन हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो प्रार्थना करें कि हे ईश्वर मुझे ऐसी शक्ति दे कि या तो मैं अपनी परिस्थितियों को बदल सकूं या उससे अलग हो सकूं, और यदि ये दोनों नहीं कर सकता हूं तो उसे पूरी तरह से स्वीकार कर सकूं। जीवन में दुख का आधार ही खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लाइफ मैनेजमेंट वाले हिस्से में बस इतना ही। अब मैं आता हूं अपने नेक्स्ट, और वो है AIR न्यूज। और फ्रेंड्स आज AIR न्यूज में बात करने के लिए हमारे पास काफी कुछ तथ्य हैं। मुझे खुशी हुई कि कल मैंने खासकर जो संसद जो हमारी बाधित हो रही थी नेशनल हेराल्ड के मामले को लेकर के, तो मैंने उसके अलग अलग आप लोगों को आस्पेक्ट बताए थे और इस बात की बड़ी विस्तार के साथ चर्चा की थी कि इसमें एक सिविल सर्विस की तैयारी करने वाला स्टूडेंट अपना स्टैंड कैसे तैयार करेगा, और खासकर किसी भी इश्यू पर, किसी भी टॉपिक पर जो हमारी क्लैरिटी होनी चाहिए उसके बारे में मैंने बताया था। मुझे बेहद खुशी है कि इसको लेकर के मेरे पास कुछ अच्छे मेल आए और उन्होंने इस कोशिश को काफी सराहा। मित्रों मैं यहां एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आप लोग मेल लिखते हैं और अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक से आपको कुछ फायदा पहुंचता है या आपकी दृष्टि साफ होती है, आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग होती है या आपको कोई नई चीज पता लगती है, तो अगर आप उसे इंगित करेंगे जैसे कि मैं इसके बारे में कह रहा हूं कि उसके बारे में आपने बताया, तब फिर मुझे ये पता लगेगा कि हाँ नहीं मुझे इसी तरीके से आप लोगों की तैयारी करानी चाहिए। एक तो आप सीधे सीधे कह देते हैं कि बहुत अच्छा लगा, लेकिन दूसरा कहने का तरीका यह होता है कि ये विशेष रूप से अच्छा लगा या ये क्यों अच्छा लगा। अगर आप कारण लिखेंगे तो मुझे लगता है कि इस डेली ऑडियो को आप लोगों के ज्यादा से ज्यादा अनुकूल बनाने में मुझे बहुत अधिक मदद मिलेगी। तो मित्रों आज भी आप के अखबारों में देखेंगे, कल के न्यूज में भी जो नेशनल हेराल्ड का मामला है वो अभी कंटिन्यू कर रहा है, वो इतनी आसानी से अभी शायद खत्म ना हो, और यहां तक कि इसको लेकर के अब GST का भी मामला थोड़ा सा, गुड एंड सर्विसेज टैक्सेस के मामले पर आप देख रहे थे कि BJP और कांग्रेस पार्टी तथा दूसरी जो और भी पार्टियां हैं उनमें एक सहमति सी बनती दिखाई दे रही थी और ये लग रहा था कि राज्यसभा में वो पारित हो जाएगा। अब कुछ राजनीतिज्ञ ये महसूस करने लगे कि शायद कांग्रेस इसका समर्थन न करे और उसका कारण ये जो नेशनल हेराल्ड का मामला जो उठा है उसको लेकर के पार्टी की राजनीति हो सकती है। स्थिति जो भी हो, अभी आप देख रहे हैं कि 2-3 दिन से जो शेयर मार्केट में गिरावट भी आई है उसका भी एक कारण ये माना जाता है कि चूंकि अब GST जो बिल है उसका पारित होना थोड़ा संदेहास्पद हो गया है, तो एक जो रिफॉर्म होना चाहिए जो इकोनॉमी रिफॉर्म उसमें थोड़ी सी बाधा आएगी, इसकी वजह से भी अभी 2-3 दिन से आप देख रहे हैं कि शेयर मार्केट भारत का गिर रहा है। दोस्तों अब ये चूंकि मामला और कंटिन्यू कर रहा है और आज के दैनिक भास्कर में आपने वेंकैया नायडू जी का लेख आया हुआ है, वो आप लोग जरूर पढ़िएगा। उसमें दो बातें आपको विशेषकर मिलेंगी, एक तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो विचार थे अलग अलग मुद्दों पर उसका एक बहुत अच्छा निचोड़ उसमें दिया हुआ है, और दूसरी बात उन्होंने ये उठाई है कि जो संसद है संसद में बातचीत होनी चाहिए। और आपने न्यूज में भी सुना है वेंकैया नायडू जी का ही स्टेटमेंट है कि ये जो संसद है, संसद एक ऐसी फोरम होती है जहां हमारे लोगों की समस्याओं पर बातचीत होनी चाहिए, लोगों की समस्याओं के समाधान पर बातचीत होनी चाहिए। तो और कांग्रेस एक परिपक्व पार्टी है, मैच्योर पार्टी है, पुरानी पार्टी है, अफसोस है कि वो ऐसा कर रही है, उनका अपना स्टेटमेंट था। सिविल सर्विस के लिए हम इसे किस एंगल से देखेंगे? जब कुछ भी घटनाएं घटती हैं तो याद रखिए कि केवल एक ही घटना आपके परीक्षा में पूछे जाने का कारण नहीं बनती है। वो घटना या तो लंबे समय से चली आ रही हो, ऐसी घटना हो, दूसरा उस घटना का बहुत ही जबरदस्त रूप से कोई सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक प्रभाव पड़ता हो, दूसरा रीजन हो सकता है, तीसरा वो घटना ऐसी हो जिसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा हुई हो, बहुत ज्यादा डिस्कशंस हुए हों, तो ये कुछ कारण होते हैं या आधार होते हैं जिनको मुद्दा बना करके हम समझते हैं कि नहीं ये हमारे एग्जामिनेशन के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। और सच पूछे तो जो मैं डेली न्यूज सुनने की बात कहता हूं उसकी इंपॉर्टेंस इस रूप में भी बहुत ज्यादा होती है, तभी आप किसी घटना के बारे में अनुमान लगा पाएंगे, अदरवाइज संभव नहीं होगा। अब आप देखिए कि पीछे चले जाइए, पिछला जो पार्लियामेंट का सेशन हुआ था तो उसमें भी आप देखते हैं कि उस सत्र में भी बहुत ज्यादा संसद बाधित हुई थी और इसको लेकर के लोग काफी चिंतित थे और काफी परेशानी भी महसूस कर रहे थे, और इनफैक्ट सही मायने में कोई संसदीय कार्य हुआ ही नहीं था यह माना जाता है, कुछ बिल जरूर पारित हुए। अब वो चीज इस अधिवेशन में भी दिखाई दे रही, पूरे के पूरे सत्र में भी दिखाई दे रही है कि शुरू के दो तीन चार दिन बातचीत होने के बाद संविधान पर बातचीत हुई, इस आपके जो देश में जो माहौल है जो इंटॉलरेंस का उस पर बात हुई, और इसके बाद से बाधित होनी शुरू हो गई। जब रियल बिजनेस का काम आया तो बाधित होने संसद शुरू हो गई। तो मित्रों हम देख रहे हैं कि संसद लगातार बाधित हो रही है। तो एक जो संसद की भूमिका होती है किसी भी डेमोक्रेसी में, या संसद को अपना जो रोल प्ले करना चाहिए, उस पर एक क्वेश्चन मुझे सिविल सर्विस के मामले में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए संसद जैसा कि मैंने कल भी कहा था एक बेसिकली एक लेजिस्लेचर है, उसका काम है एक फोरम है, जैसा कि नायडू जी का स्टेटमेंट आपने कल के न्यूज में भी सुना है कि वहां लोगों की समस्याओं के बारे में बातचीत हो, उस समस्याओं का समाधान कैसे निकाला जाए इसके बारे में बातचीत हो, और उनके बातचीत कुछ इस तरीके से हो कि जहां तक देश के हित का सवाल है, लोगों के हित का सवाल है, फिर वहां पक्ष और विपक्ष की भूमिका जैसी कोई चीज नहीं रहती है, वहां तो मूल रूप से राष्ट्रहित प्रमुख होता है। हाँ, विपक्ष इस रूप में अपना जरूर रोल निभाता है कि कहीं ऐसा न हो कि जो सत्ताधारी पार्टी है वो अपने आप में एक तानाशाही का रूप ले ले और जो मन में आए वो करे। तो विपक्ष वहां एक स्पीड ब्रेकर का काम करता है जो होना ही चाहिए। तो ऐसी स्थिति में अब लोग ये महसूस कर रहे हैं कि संसद सही मायने में अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पा रही है। तो इस रूप में मित्रों आपको जो संसद की भूमिका, उसकी उपयोगिता, क्या उसको किया जाना चाहिए या संसद बाधित न हो इसके लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए, इन सब को लेकर के मुझे लगता है कि आपको अपना स्टैंड तैयार करना चाहिए। तो मित्रों ये नेशनल हेराल्ड के न्यूज से रिलेटेड जो चीजें हमारे सामने आ रही हैं उसको लेकर के था। दूसरी जो एक इंपॉर्टेंट खबर थी फ्रेंड्स, वो खासकर दालों के बफर स्टॉक को लेकर थी। देखिए अब ये दालों के बफर स्टॉक के मामले को आप सिविल सर्विस के लिए इंपॉर्टेंट कैसे समझेंगे, क्या आधार है आपके पास? देखिए जो स्टूडेंट शुरू से बहुत ही सेंसिटिव तरीके से बड़े सिंसियर होकर के सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है वही इसको पकड़ पाता है। आप देख रहे हैं कि पिछले 3 महीनों से दालों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी होती चली जा रही है। आपको मालूम है कि फिर दालों के मूल्य को नियंत्रण करने के लिए सरकार ने कई जगह छापे मारे जिसमें दालें मिली, दालों का आयात भी किया गया ताकि दालों के मूल्य में कमी आए, लेकिन अभी भी कोई बहुत ज्यादा कमी आ नहीं रही है। इसी बीच में दालों के उत्पादन को लेकर के बहुत से आर्टिकल्स भी लिखे गए, मौसम विज्ञानियों ने अपना दृष्टिकोण दिया और खासकर जो कृषि शास्त्री हैं उन्होंने अपना दृष्टिकोण दिया कि भारत में किस तरीके से दालों के उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है, जिसमें आपने देखा कि भूमि की उर्वरता, वर्षा, दालों के बीजों के किस्म से लेकर के उनके भंडारण और उनके मूल्य निर्धारण तक की बात कही गई थी, और इन सारे इश्यूज पर हम लोगों ने बहुत डिटेल में बातें भी की हैं और आप सबको मैंने इससे रिलेटेड आर्टिकल्स और एडिटोरियल कमेंट्स भी प्रोवाइड किए हैं। और मैंने बहुत पहले भी उसी दौर में आपसे कहा था कि अब कृषि व्यवस्था के अंतर्गत जो क्वेश्चन बन रहा है उसमें दालों का मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा हिस्सा हो सकता है या दालों पर पूछा जा सकता है भारत में दालों की कमी पर। तो अब स्वाभाविक है कि सिविल सर्विस में आपको अपने को लगातार अपडेट तो करते रहना होगा, आपको अपने को लगातार उन चीजों को कंटिन्यूटी में समसामयिक बनाते रहना पड़ेगा। तो उसकी अब अपडेटेशन ये है कि अब जो हमारी कैबिनेट होती है उस कैबिनेट की जो आर्थिक मामलों की समिति होती है, मैं जानबूझकर यहां इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस प्री में पूछ लिए जाते हैं कि दालों के बारे में निर्णय लेने का अधिकार किसको है या किसने निर्णय लिया, तो आपको मालूम होना चाहिए कि कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने लिया। उसने जो लिया एक बहुत इंपॉर्टेंट है और चूंकि ये बहुत ही माइलस्टोन है या कह लीजिए कि एक पॉलिसी मैटर है कि दालों का भी बफर स्टॉक किया जाएगा, देखिए वैसे सुनने में ये बहुत छोटी सी बात लगती है कि ठीक है बफर स्टॉक आप बना लीजिए, स्टॉक कर लीजिए, लेकिन जब तक आपके सामने पीछे का पूरा क्रम नहीं है तब तक आप इसके इंपॉर्टेंस को समझ नहीं पाएंगे। और बहुत स्वाभाविक है कि जब आप किसी के इंपॉर्टेंस को ही नहीं समझ पाएंगे तो फिर आप उसको पकड़ेंगे क्यों? फालतू की चीजें तो हमें वैसे भी अपने पास रखनी नहीं चाहिए। तो जो स्टूडेंट सेंसेटिव तरीके से, जैसा कि मैंने कहा, उसकी तैयारी कर रहा है, वो इसको समझ लेगा और इसे नोट कर लेगा कि सरकार के कैबिनेट, मतलब सरकार ने यह फैसला किया है कि दालों का बफर स्टॉक बनाया जाए। फिर न्यूज में आपने सुना कि बफर स्टॉक 50 लाख टन। फिर देखिए कि बफर स्टॉक बनाने के बारे में सरकार ने 2-3 बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। बफर स्टॉक का मतलब क्या हुआ कि हमारे सरकार के पास स्टॉक होगा और जैसे ही दालों की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगी सरकार अपने गोडाउन से दाल निकाल करके बाजार में उसकी एक पर्टिकुलर रेट पर सप्लाई कर देगी और दालों का मूल्य नियंत्रण में आ जाएगा, ठीक वैसे जैसे कि गेहूं और चावल के मामले में होता है। अभी तक भारत सरकार जो बफर स्टॉक लेती है वो चावल और गेहूं का ही अपने पास रखती है, इसलिए आप देखेंगे कि भारत में के बाजार में चावल और गेहूं के दाम अनरीजनेबल लेवल पर कभी भी उतने बढ़ नहीं पाते। मौसम के हिसाब से, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होता रहता है, लेकिन बहुत ज्यादा जिस तरह से दालों की कीमतें बढ़ गई या कह लीजिए कि प्याज की कीमतें बढ़ जाती हैं, उस तरीके से आपको गेहूं और चावल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं मिलेगी। तो इसको बाजार मूल्य को नियंत्रण करने के लिए दाल के स्टॉक का बफर स्टॉक रखने का निर्णय लिया गया, लगभग 50 लाख टन इसके लिए सरकार दालों की खरीदी करेगी। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि दालों की जो खरीदी की जाएगी वो बाजार मूल्य पर की जाएगी, मतलब अभी तक उन्होंने अपना कोई मिनिमम रेट उसमें निर्धारित नहीं किया है, क्योंकि अगर बाजार मूल्य से कम में खरीदी जाएगी तो सीधी सी बात है कि एक तो दाल ही इनको नहीं मिलेगा, दूसरा अगर मिल भी गया तो वो दाल के उत्पादन को हतोत्साहित करेगा, क्योंकि जब हम दाल, भारत में दाल की उत्पादकता की बात करते हैं तो आपको ध्यान होगा कि उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये आता है कि चूंकि उनके मूल्य बहुत कम है इसकी वजह से किसानों के लिए ये फायदे का सौदा नहीं है, तो दाल ज्यादा दालें बोते नहीं है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात न्यूज में थी कि बाजार मूल्य पर दाल खरीदी जाएंगी, और दूसरा ये भी था कि सरकार ने दाल के आयात के बारे में भी फैसला किया है, क्योंकि हमारे यहां अपने ही बाजार में जो दाल की मांग है और सप्लाई है उसमें एक बहुत बड़ा अंतर अभी मौजूद है, और जब तक इस अंतर को फुलफिल नहीं किया जाएगा तब तक स्वाभाविक रूप से दालों के मूल्य कम नहीं होंगे। तो मित्रों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर थी जिसके बारे में मैंने अभी आपसे बातें की। दो और भी खबरें थी, नंबर एक भारत और पाकिस्तान के बारे में, के संबंधों के बारे में जो हमारे विदेश मंत्री हैं उनका स्टेटमेंट आपने न्यूज में सुना, और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि भारत और पाकिस्तान अब समग्र वार्ता के लिए तैयार हुए हैं। मित्रों इसमें समग्र शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, समग्र वार्ता का मतलब है कि सारे इश्यूज पर बात करेंगे, केवल एक ही इश्यूज पर बात नहीं होगी। तो ठीक है, अब इसके लिए आपने न्यूज में ये भी सुना कि जो सार्क सम्मेलन होगा नेक्स्ट ईयर सितंबर में, मोस्ट प्रोबेबली 2016 में, उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर जाएंगे और उसमें इस दौर की बातचीत होगी। और आपने ये भी सुना कि 2004 के बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पाकिस्तान की यह पहली यात्रा होगी, वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे 2004 में तब वे वहां गए थे, तो एक अच्छी संभावनाएं बनी है। और आज का अगर आप एडिटोरियल कमेंट पढ़ेंगे दैनिक भास्कर में तो आपको एक बड़ा सुखद आश्चर्य होगा कि कल जिस इश्यू पर मैंने बात की थी कि कैसे पेरिस से बैंकॉक होते हुए अब वो कैसे पूरा का पूरा मामला आगे बढ़ रहा है, वही पूरी की पूरी लाइन संबंधों की आपको उस दैनिक भास्कर के एडिटोरियल में दिखाई देगी। मित्रों दूसरी जो खबर थी हार्ट ऑफ एशिया अफगानिस्तान पर जो सम्मेलन हुआ था जिसके लिए ही हमारी विदेश मंत्री वहां इस्लामाबाद गई थी, उसकी खबरें थी। और देखिए हार्ट ऑफ एशिया के बारे में आपको ये कि इस सम्मेलन के बारे में इतने जानना है कि खासकर अफगानिस्तान तालिबान से बहुत ज्यादा परेशान रहा है, आतंकवादी संगठन है तालिबान, बहुत ज्यादा परेशान रहा। और उसके नतीजे में पहले तो जब सोवियत संघ ने अपनी सेना वापस कर ली तो फिर अमेरिका ने अपनी सेनाएं भेज दी, तालिबान पर नियंत्रण किया गया, और अभी भी खासकर अफगानिस्तान में अमेरिका की सेना मौजूद है, हालांकि अब यूएनओ की सेना है मौजूद है अमेरिका की है। और आपको ध्यान होगा कि 2 साल पहले 2013 में मेंस में एक क्वेश्चन भी पूछा गया था, उस समय अमेरिका ने घोषणा की थी कि वो 2014 तक धीरे धीरे करके अफगानिस्तान से अपनी सेनाएं वापस बुला लेगी। तो लोगों को ये डर लगने लगा कि अगर अफगानिस्तान से अमेरिका अपनी सेनाओं को वापस बुला लेगा तो फिर से अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होने लगेगा, और तालिबान का कब्जा होने का मतलब है कि फिर से इस क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियों का बढ़ना, और इसके लिए भारत, सबसे ज्यादा भारत को सतर्क रहने की जरूरत थी। तो इसी को आधार बना करके 2013 के मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज वापस हो गई तो भारत अपनी सुरक्षा के लिए क्या क्या कदम उठाने के बारे में सोच रहा है, पूरा फुल क्वेश्चन था आया था। तो आप समझ सकते हैं कि जो हार्ट ऑफ एशिया अफगानिस्तान सम्मेलन था वो भारत के लिए कितना ज्यादा मायने रखता है। अफगानिस्तान के लिए तो वो है ही, लेकिन भारत की सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत मायने रखता है, और इस दृष्टि से भी कि अफगानिस्तान में भारत के कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चाइना के भी कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो आपने न्यूज में सुना कि दो इश्यूज पर सबसे ज्यादा बात हुई है, एक तो आतंकवादी गतिविधियों को कैसे नियंत्रित किया जाए और दूसरा कैसे अफगानिस्तान में एक जो स्थिरता होनी चाहिए वो लाई जाए, क्योंकि अफगानिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो बुरी तरह से कह लीजिए कि दुष्प्रभावित हुई इस बीच में तालिबानियों के कारण। तो दोस्तों ये हार्ट ऑफ एशिया के बारे में ये खबर थी। तो दोस्तों AIR न्यूज के बारे में बस इतना ही। जहां तक आपके न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स का सवाल है, वो सारी क्लिपिंग्स आपको नॉलेज सेंटर पर अवेलेबल हो जाएंगी, उनके बारे में मैं अब अलग से बात फिलहाल नहीं कर रहा हूं। और मित्रों अब सीधे ही मैं आता हूं कल के जो मुझे ईमेल मिले हैं उनके ऊपर। मित्रों जैसा कि मैंने कहा कि बहुत से ईमेल आए हैं, उन सबके नाम लेना संभव नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं कुछ के नाम लेता हूं जिनके ईमेल थोड़े से विशेष होते हैं या मुझे लगता है कि इनका नाम लिया जाना चाहिए। मतलब मेरे बहुत से अलग अलग क्राइटेरिया हैं, तो इसलिए जिनके मैं नाम नहीं ले पाता वो क्षमा करेंगे, ये न मान करके चलें कि उनका मेल नहीं पढ़ा गया है, वो मेल पढ़ा गया है। एक दो चीज़ें मैं कहना चाहूँगा इससे पहले कि मैं कुछ दोस्तों के नाम लूँ। जो हॉलैंड या नीदरलैंड को लेकर के एक बात आई थी हॉकी लीग को लेकर के, तो मैं बताना चाहूँगा कि हॉलैंड और नीदरलैंड दोनों एक ही है, जैसे कि कोई इंडिया या भारत और हिंदुस्तान कह दे उसी तरीके से। एक मेल मेरे पास नीरज गंगवाल का आया है भीलवाड़ा से कि उनके जो दोस्त हैं देवेंद्र सिंह, उनका निधन हो गया और उन्होंने ही RDO के बारे में उनको बताया था। तो हम सब देवेंद्र सिंह के इस निधन पर बहुत दुख व्यक्त करते हैं और उनके प्रति श्रद्धांजलि भी देते हैं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। और एक मेल मेरे पास आया पारुल जायसवाल का गोंडा से, जिनके पिता ने कल मेल लिखा था और जिनका मैंने उल्लेख भी अपने RDO में किया था, जो इस खासकर डेली RDO के लाइफ मैनेजमेंट वाले पार्ट को बहुत पसंद करते हैं और उसके बारे में दूसरों को भी जानकारी देते हैं, सुनाते हैं। मुझे अच्छा ये लगा कि पारुल केवल 9th की स्टूडेंट है और उसने मेल लिखा है। तो पारुल तुमको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत सच पूछो तो मेरी ओर से आशीर्वाद भी। तो मित्रों सब उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, उन सबके प्रति बहुत बहुत आभार जिन्होंने मेल लिखे हैं। और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के मैं अब नाम लेना चाहूँगा, वह हंसराज तेली जो खेरखट्टा बूंदी राजस्थान से हैं, AP पांडे लखनऊ से हैं, राहुल हैं निशा कुशवाहा हैं इलाहाबाद से, जयेश यादव हैं छिंदवाड़ा से और रोहित कुमार हैं अलीगढ़ से। आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों इसी के साथ ही आज का यह RDO डेली RDO यहीं समाप्त होता है, कल आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।